नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रोजर लोवेनस्टीन की अमेरिकाज बैंक एक गैर कथात्मक वित्तीय और राजनीतिक इतिहास है जो 19वीं सदी के आरंभ से लेकर 1913 के फेडरल रिजर्व एक्ट तक अमेरिका में केंद्रीय बैंक बनाने के लंबे संघर्ष को समझाती है। पुस्तक का केंद्र केवल संस्था की स्थापना नहीं बल्कि वह विश्वास है जिसने उसे इतना कठिन बनाया। प्रथम और द्वितीय बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के अनुभव, एंड्रू जैक्सन का बैंक विरोध, बिखरी हुई बैंकिंग व्यवस्था, मौसमी नकदी की कमी और बार बार आने वाले वित्तीय आतंक, सभी इस पृष्ठभूमि के हिस्से हैं। लोवेनस्टीन दिखाते हैं कि सुधार का प्रश्न तकनीकी होने के साथ गहरा लोकतांत्रिक प्रश्न भी था। नई मुद्रा कौन जारी करे, व्यवस्था कितनी केंद्रीकृत हो और अंतिम नियंत्रण निर्वाचित नेताओं के पास हो या बैंकरों के पास, पॉल वारबर्ग, नेल्सन एल्ड्रिच, कार्टर ग्लास और वुड्रो विल्सन जैसे पात्रों के माध्यम से पुस्तक बताती है कि फेडरल रिजर्व एक शुद्ध आर्थिक डिजाइन नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी हितों के बीच बना राजनीतिक समझौता था। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, केंद्रीय बैंक के विरुद्ध अमेरिकी अविश्वास की ऐतिहासिक जड़ें। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान यह स्पष्ट करना है कि फेडरल रिजर्व का जन्म किसी अचानक वित्तीय विचार से नहीं हुआ था। अमेरिकी राजनीति में केंद्रित वित्तीय सत्ता के प्रति पुराना संदेह मौजूद था। प्रथम बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का चार्टर समाप्त हुआ, फिर द्वितीय बैंक बना और एंड्रू जैक्सन के विरोध ने उसके अंत को निर्णायक बना दिया। बैंक विरोधी राजनीति में यह डर था कि एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था धनवान हितों को असाधारण प्रभाव देगी और आम नागरिकों से दूर शक्ति केंद्रित करेगी। इस इतिहास के कारण बाद के सुधारकों के सामने केवल दक्षता का प्रश्न नहीं था, उन्हें यह भी साबित करना था कि केंद्रीय व्यवस्था लोकतंत्र विरोधी निजी बैंकिंग गठजोड़ नहीं बनेगी। लोवेनस्टीन इस निरंतरता को उपयोगी ढंग से उभारते हैं क्योंकि इससे समझ आता है कि 1913 की बहस में पुराने प्रतीक और स्मृतियां इतने प्रभावी क्यों थे। केंद्रीय बैंक के समर्थकों को आर्थिक स्थिरता, भुगतान प्रणाली और आपातकालीन तरलता की भाषा बोलनी पड़ती थी, जबकि विरोधी इसे वॉल स्ट्रीट के प्रभुत्व की वापसी मान सकते थे। इसलिए फेड का संस्थागत ढांचा आरंभ से ही राजनीतिक वैधता अर्जित करने की कोशिश था। पुस्तक बताती है कि किसी वित्तीय संस्था की स्वीकार्यता उसके आर्थिक कार्यों जितनी ही उसके इतिहास और सत्ता के वितरण पर निर्भर करती है। दूसरा, बिखरी बैंकिंग व्यवस्था, मौसमी नकदी संकट और वित्तीय आतंक। लोवेनस्टीन फेड की आवश्यकता के पक्ष में उस व्यवस्था की व्यावहारिक कमजोरियों को रखते हैं जो उसके पहले मौजूद थी। अमेरिका में अनेक स्थानीय और राज्य स्तरीय बैंक थे जिनके बीच भुगतान, आरक्षित निधि और नकदी का प्रवाह असमान था। ग्रामीण इलाकों तथा फसल के मौसम में मुद्रा की मांग बढ़ती, जबकि प्रमुख वित्तीय केंद्रों में आरक्षित धन और सट्टा बाजारों का संबंध तनाव पैदा करता था। ऐसी प्रणाली में एक जगह का अविश्वास तेजी से दूसरी जगह तक फैल सकता था। बैंक नकदी बचाने लगते, ऋण सिकुड़ता और कारोबारों को भुगतान के लिए आवश्यक धन मिलना कठिन हो जाता। यह केवल बैंकरों की परेशानी नहीं थी क्योंकि कृषि, मजदूरी, व्यापार और परिवहन सभी ऋण तथा भुगतान व्यवस्था पर निर्भर थे। 1907 का आतंक इस कमजोरी का प्रमुख उदाहरण बनता है। संकट के समय जेपी मॉर्गन जैसे निजी वित्तपति की समन्वयकारी भूमिका ने यह असहज प्रश्न खड़ा किया कि राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता किसी निजी व्यक्ति की क्षमता और इच्छा पर क्यों टिकी हो। पुस्तक इस प्रसंग से बताती है कि केंद्रीय बैंक की मांग का अर्थ हर बैंक को नियंत्रित करना भर नहीं था। उद्देश्य ऐसी साझा व्यवस्था बनाना था जो संकट में तरलता दे, भुगतान तंत्र को चलाए और स्थानीय घबराहट को राष्ट्रीय ध्वंस में बदलने से रोके। तीसरा, पॉल वारबर्ग और यूरोपीय मॉडल से अमेरिकी सुधार की कल्पना। पुस्तक में पॉल वारबर्ग का महत्व इस बात में है कि वे अमेरिकी बैंकिंग की समस्याओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। यूरोपीय बैंकिंग अनुभव से परिचित वारबर्ग को अमेरिकी व्यवस्था अत्यधिक खंडित और संकट के प्रति असुरक्षित लगी। उनका तर्क किसी विदेशी ढांचे की यांत्रिक नकल के लिए नहीं था बल्कि इस विचार के लिए था कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को लोचदार मुद्रा, विश्वसनीय पुनर्वित्त और संकट में समन्वय करने वाली संस्था चाहिए। फिर भी उनके विचारों को अमेरिकी राजनीतिक भाषा में रूपांतरित करना कठिन था। यूरोपीय शैली की अधिक केंद्रीकृत संस्था अमेरिकी जनता और विधायकों को वित्तीय अभिजात वर्ग की परियोजना लग सकती थी। लोवेनस्टीन वारबर्ग को केवल तकनीकी विशेषज्ञ नहीं बनाते बल्कि ऐसे सुधारक के रूप में रखते हैं जिसे अपने विचारों के राजनीतिक परिणाम समझने पड़े। नाम इस पहलू से पुस्तक वित्तीय नीति की एक मूल सीमा दिखाती है। आर्थिक रूप से सुसंगत मॉडल भी तब तक लागू नहीं होता जब तक वह स्थानीय इतिहास, जन अविश्वास और सत्ता संतुलन के अनुकूल न बनाया जाए। वार्बर की भूमिका यह भी दर्शाती है कि संकट अक्सर विशेषज्ञों के पुराने प्रस्तावों को सुनने योग्य बनाते हैं, लेकिन प्रस्ताव की सफलता उसके तर्क के साथ साथ उसके समर्थकों की विश्वसनीयता और विरोधियों की आशंकाओं को संबोधित करने पर निर्भर रहती है। चौथा, केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच फेडरल रिजर्व का समझौता। फेडरल रिजर्व की विशिष्ट संरचना पुस्तक का केंद्रीय विषय है। सुधारकों के सामने तीन जुड़े प्रश्न थे। मुद्रा और ऋण व्यवस्था को कौन संभालेगा, नियंत्रण कितना केंद्रित होगा और क्या बैंकरों को निर्णायक भूमिका मिलेगी। पूरी तरह केंद्रीकृत राष्ट्रीय बैंक समर्थकों को अधिक कुशल लग सकता था, लेकिन वह वॉल स्ट्रीट की सत्ता के भय को तीखा करता। दूसरी ओर, केवल स्थानीय बैंकों पर आधारित ढांचा राष्ट्रीय संकटों के समय पर्याप्त समन्वय नहीं दे सकता था। अंततः बना मॉडल केंद्रीय बोर्ड और 12 क्षेत्रीय रिजर्व बैंकों को जोड़ता था। यह डिजाइन तकनीकी आदर्श से अधिक राजनीतिक समाधान था। इससे राष्ट्रीय निगरानी तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दोनों को जगह मिली। कार्टर ग्लास जैसे नेताओं की चिंताएं दिखाती हैं कि बैंकिंग सुधार के समर्थक भी निजी वित्तीय प्रभाव से आशंकित थे। वुड्रो विल्सन के दौर में विधायी प्रक्रिया ने प्रस्ताव को बदलते हुए अधिक सार्वजनिक जवाबदेही देने की कोशिश की। लोवेनस्टीन का विश्लेषण ये समझने में मदद करता है कि संस्थागत जटिलता हमेशा प्रशासनिक भूल नहीं होती, कभी वह परस्पर विरोधी हितों को एक ही व्यवस्था में बांधने की कीमत होती है। आज फेड की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय बैंकों और राजनीतिक जवाबदेही पर होने वाली बहसें भी उसी मूल समझौते की विरासत हैं। अंत में मुद्रा नियंत्रण, लोकतांत्रिक जवाबदेही और बदलती फेडरल रिजर्व भूमिका। अमेरिका बैंक स्थापना की कहानी के माध्यम से व्यापक प्रश्न उठाती है कि धन और ऋण पर सार्वजनिक नियंत्रण का अर्थ क्या है। मुद्रा की आपूर्ति केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, उसका असर रोजगार, व्यापार, कृषि ऋण, कीमतों और राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है। इसलिए सुधार बहस में बैंकरों की विशेषज्ञता आवश्यक मानी गई, पर उन्हें अकेले नियंत्रण देने से लोकतांत्रिक वैधता का संकट खड़ा होता। राजनेताओं का नियंत्रण जवाबदेही बढ़ा सकता था, लेकिन उससे अल्पकालिक राजनीतिक दबाव का जोखिम भी था। पुस्तक इन विरोधों का कोई सरल स्थायी समाधान प्रस्तुत करने के बजाय दिखाती है कि फेडरल रिजर्व एक्ट ने उन्हें संस्थागत रूप दिया। बाद के दशकों में स्वर्ण मानक से दूर जाने पर फेड की मौद्रिक भूमिका और व्यापक हुई, क्योंकि मुद्रा प्रबंधन को धातु आधारित सीमा से कम बांधा गया। यह विकास पुस्तक की मूल स्थापना को और प्रासंगिक बनाता है। केंद्रीय बैंक की शक्ति बढ़ने पर उसके निर्णयों की पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही का प्रश्न भी बड़ा होता है। इस विषय पर पुस्तक का उपयोगी पाठ यह है कि फेड को केवल ब्याज दर तय करने वाली तकनीकी एजेंसी मानना अधूरा है। वह है अमेरिकी संघवाद, निजी वित्त, निर्वाचित सरकार और जनता के बीच लगातार बदलते संबंधों का परिणाम है। हालांकि केंद्रीय बैंक के विकल्पों पर अधिक आलोचनात्मक आर्थिक बहस चाहने वाले पाठकों को इसे अन्य दृष्टिकोणों के साथ पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष में, अमेरिकाज बैंक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो फेडरल रिजर्व को समकालीन समाचारों में सुनते हैं, लेकिन उसके संस्थागत जन्म और राजनीतिक संरचना को समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र, अमेरिकी इतिहास, सार्वजनिक नीति, बैंकिंग या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विद्यार्थी इससे ठोस पृष्ठभूमि प्राप्त करेंगे। सामान्य पाठक के लिए इसकी ताकत यह है कि लोवेनस्टीन मुद्रा और बैंकिंग के कठिन विषयों को व्यक्तियों, संघर्षों और विधायी समझौतों के माध्यम से सुलभ बनाते हैं। पुस्तक यह बौद्धिक लाभ देती है कि केंद्रीय बैंक पर आज की बहसों जैसे स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, राष्ट्रीय समन्वय बनाम स्थानीय प्रतिनिधित्व और वॉल स्ट्रीट बनाम मेन स्ट्रीट को लंबे ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा सके। समान विषय की अधिक तकनीकी आर्थिक पुस्तकों की तुलना में यह पुस्तक संस्थागत निर्माण की राजनीति पर अधिक केंद्रित है। यह न तो केवल वित्तीय आतंकों का विवरण है, न केवल महान व्यक्तियों की जीवनी। इसकी अलग पहचान इस बात में है कि यह दिखाती है कि आर्थिक संकट, वैचारिक भय और विधायी सौदेबाजी मिलकर किस तरह एक टिकाऊ पर अंतर्विरोधों से भरी संस्था बनाते हैं। फिर भी पाठक को ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। मुक्त बैंकिंग या केंद्रीय बैंक विरोधी विकल्पों का विस्तृत मूल्यांकन चाहने के लिए पूरक स्रोत उपयोगी होंगे। इसी सीमा के बावजूद फेड की उत्पत्ति का जीवंत, शोध आधारित और राजनीतिक रूप से सजग परिचय होने के कारण यह अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रॉजर लोवेनस्टीन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।